पुस्तक सात्विक, लेक्चर नंबर 13। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं,
नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, नमिऊणन्तजिणम् अनन्तनाणेन दीर्घसौवर्ठम् कम्मपदे सविहत्तिम् वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 54 पर आ गए हैं। 54 अभी यहाँ से नया अभी अपना अधिकार शुरू हो जाता है। अभी तक हमने नाना जीवों की अपेक्षा, भंग, भागाभाग, परिमाण,
स्पर्शन
और क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अंतर, ये सब देखा था। अभी हम यहाँ सन्निकर्ष देखने जा रहे हैं। 54 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन। सन्निकर्ष दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, यानी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति में सन्निकर्ष बताएंगे। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला जीव 12 कषाय और 6 नौ कषायों की नियम से विभक्ति वाला होता है। सन्निकर्ष का अर्थ है जब एक ही उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति है तो उसके साथ अन्य जो उत्तर प्रकृतियां हैं किसकी किसकी उत्कृष्ट होगी या अनुत्कृष्ट होगी। तो जहां मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है, हमने देखा ना गुणित कर्मांशिक है, वो सातवें नरक में आता है लास्ट में। तो जहां मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है वहीं पर 12 कषाय और 6 नौ कषाय, ये 12 में किसको नहीं लिया? संज्वलन को, क्योंकि उसका उत्कृष्ट तो बाद में है। हाँ, उसकी उत्कृष्ट क्षपणा में होता है।
हाँ? 12 कषाय में किसको लेना,
12 में किसको लेना,
किसको छोड़ा?
अनंत अनुबंधी को छोड़ना है। चार संज्वलन और पुरुष वेद के नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति हुआ। संज्वलन की
एक मिनट,
वही तो इसीलिए मैंने बोला इसमें संज्वलन को छोड़ना है। 12 कषाय में किसको लेना किसको छोड़ना, तो 4 संज्वलन को छोड़ना ऐसा कहा था मैंने। मैं उसी को कंफर्म कर रहे हैं।
और आपने
नहीं अरविंद भाई हाँ ये जो 12 कषाय लिए हैं संज्वलन बिना 12 कषाय, यदि हम नारक आदेश में अगर घटित करेंगे तो 16 के 16 कषाय लेंगे। यहाँ पर यहाँ क्षपणा नहीं होती। देखो क्षपणा में क्या होता है, सारा ही मोहनीय का द्रव्य जो है चारित्र मोहनीय का, वो पूरा ही पूरा इसमें आ जाता है ना, पहले नौ कषाय फिर पुरुष वेद, वो सब संज्वलन क्रोध में आ जाएगा। मुनि का जितना सारा चारित्र मुनि का द्रव्य है वो पूरे का पूरा इसमें आ जाएगा, इसलिए वहां पर क्षपणा में उसका उत्कृष्ट होगा। उसके लिए भी पहले गुणित कर्मांशिक से लाना है, गुणित कर्मांशिक से आया हुआ फिर बाद में उसने जल्दी चारित्रमों की क्षपणा की, ऐसा जीव लेना वहां। तो यहाँ संज्वलन बिना लेना सर, हाँ, और तीन वेद छोड़कर, छह नौ कषाय में तीन वेद को छोड़ा। ओग से मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला जीव बारह कषाय और छह नौ कषाय के नियम से विभक्ति वाला होता है,
उत्कृष्ट विभक्ति वाला
नहीं नहीं, किंतु वह इसकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला भी होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला भी होता है। उत्कृष्ट भी है, हो सकता है अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला होता है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा उसके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत भागहीन होती है या असंख्यात भागहीन होती है। स्त्रीवेद और नपुसक वेद की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला होता है, जो नियम से असंख्यात भागहीन प्रदेश विभक्ति वाला होता है। इस पर अभी शंका पूछेंगे। मैंने विभक्ति वाला इतना कह दिया, उत्कृष्ट भी हो सकता है अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, परंतु वो चार संज्वलन में कहेंगे तो उत्कृष्ट वाला नहीं ही होता, अनुत्कृष्ट वाला ही होता। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी ली है, हाँ, क्योंकि संज्वलन का उत्कृष्ट तो बाद में ही होता है। अभी शंका, स्त्रीवेद का द्रव्य, बड़ी संख्या शंका है एकदम, स्त्रीवेद का द्रव्य संख्यात गुणाहीन होना चाहिए। संख्यात गुणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि नारकियों में जो स्त्रीवेद का बंधक काल है उससे, तथा देवकुरु और उत्तर कुरु में जो स्त्रीवेद का बंधक काल है उससे प्राप्त हुआ नपुसक वेद का बंधक काल संख्यात बहुभाग अधिक देखा जाता है। यानी नारकियों में जो स्त्रीवेद का बंधक काल है उससे देवकुरु उत्तर कुरु में स्त्रीवेद का बंधक काल ज्यादा है, और उससे नारकियों में जो नपुसक वेद का बंधक काल है वो संख्यात बहुभाग अधिक है। यानी ये संख्यात वा भाग है, वो संख्यात बहुभाग है, उसका अर्थ है वो संख्यात गुणा है। स्त्रीवेद के बंधक काल से नारकियों में जो नपुसक वेद का बंधक काल है वो संख्यात गुणा है। ये शंका करके शंका वो भी इस पर से घटित करना चाहता है। इस प्रकार संख्यात गुना होने से देवकुरु उत्तर कुरु में स्त्रीवेद का पूरण काल, पूरण काल का हमने क्या अर्थ देखा था, वो उसका मैक्सिमम कर देता है, किसने काल में, पल्ले के असंख्यात वे भाग काल में, इसको उसका पूरण काल कहेंगे। तो उसका पूर्ण काल एक गुणहानि के असंख्यात वे भाग प्रमाण ऐसा मानकर, गुणहानि भी पल्ले के असंख्यात वे भाग होती है परंतु उसका भी असंख्यात वा भाग ऐसा मानकर उसे असंख्यात वे भागहीन मानना उचित नहीं है, क्योंकि वहां असंख्यात गुणहानियां उपलब्ध होती है और उनका प्राप्त होना असंभव भी नहीं है। क्योंकि रति के उत्कृष्ट द्रव्य से स्त्रीवेद का उत्कृष्ट द्रव्य संख्यात गुणा है। इस प्रकार आगे कहे जाने वाले अल्प बहुत्व सूत्र के अनुसार वहां असंख्यात गुणहानियां उपलब्ध होती है। पहले पूरी शंका पढ़ेंगे, तथा नपुसक वेद के द्रव्य को भी संख्यात विभागहीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईशान कल्प के देवों में नपुसक वेद के साथ समस्त स्थावर बंधक काल को प्राप्त करके, यानी स्थावर में जाने वाला है उसके, ऐसा समझकर उसने नपुसक वेद का बंध किया है ऐसा समझेंगे, क्योंकि जब जब स्थावर का बंध करेगा तब तब नपुसक वेद का ही बंध होगा उसको। पुनः त्रस बंधक काल के संख्यात खंड करने पर बहुभाग प्राप्त होता है, और त्रस बंधक काल में भी नपुसक वेदी तो हो ही सकता है, वहां भी उसने नपुसक वेद बांधा। यदि कहा जाए कि उत्तर कुरु, देव कुरु और ऐशान कल्प के देवों में स्त्री वेद और नपुसक वेद को पूर कर, यानी वहां उसने मैक्सिमम बंध करके, तथा नारकियों में उत्पन्न होकर मिथ्यात्व के द्रव्य को उत्कृष्ट करने वाले जीव के स्त्रीवेद और नपुसक वेद की असंख्यात भाग हानि होती है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 33 सागर प्रमाण काल के भीतर असंख्यात गुणहानि प्रमाण द्रव्य के गल जाने पर नरक गति संबंधी संचय को छोड़कर कुरु और ऐशान कल्प के देवों में संचित हुए द्रव्य का अवस्थान मानने में विरोध आता है। इनका ये कहना है नारकी के जो अंत में हम मिथ्यात्व का उत्कृष्ट देखते हैं, तो भले वो उत्तर कुरु वगैरह में अधिक से अधिक या ऐशान में मैक्सिमम करके आया है द्रव्य, फिर भी इतने 33 सागर तक तो वो सारा गल जाएगा, पहले जो उत्कृष्ट लेकर आया है वो पूरा के पूरा गल जाएगा, इसलिए असंख्यात भाग हीनपना नहीं बनता है। ये ऊपर जो लिखा था ना, स्त्रीवेद और नपुसक वेद की नियम से अनुत्कृष्ट होती है और वो उत्कृष्ट की अपेक्षा असंख्यात भागहीन है, उसके लिए शंकाकार के ऑब्जेक्शन है, ये असंख्यात भागहीन क्यों कहते हो, कितना चाहिए उसको कहेंगे। कितना होना चाहिए ऐसा?
हाँ,
संख्यात्व भाग हीन होना चाहिए कहते, नपुसक वेद के द्रव्य को भी संख्यात्व भाग से हीन होना चाहिए कहते, पहले स्त्रीवेद के द्रव्य को संख्यात गुणाहीन होना चाहिए कहा था, संख्यात्व भाग होना चाहिए, चाहिए संख्यात्व भाग हीन कहने से संख्यात्वा भाग हीन नहीं है कहेंगे, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ऊपर क्या लिखते हैं देखेंगे, देखो उसकी शंका कहां से शुरू होती है हम देखते हैं।
एक दो तीन चार और पांचवे लाइन में संख्या जो भाग ही है।
इति नऊ से वेदानम नियमा अनुकस्य वियति असंख्य जो भाग ही नो, ये तो उन्होंने बताया तीसरी लाइन में शुरू होता था, इति वेद द्रव्येन संख्येज गुणहीनेन होदव्यम होना चाहिए था, ये शंकाकार की शंका यहाँ से, ये शंका यहाँ से शुरू होती है। नेरय इति वेद बंधगद्धादो कुरविति वेद बंधगद्धाय लद्धनंसे वेद बंधगद्धा संख्येज भाग बहुभागा, यानी नारकी में जो स्त्रीवेद का बंधकाल है उससे कुरु में, उत्तर कुरु देव कुरु में जो बंधक काल है वो बड़ा है, और उससे भी नारकी में जो नपुसक वेद का बंधक काल है वो संख्यात बहुभाग है। एवं संख्येज गुणत्तादो कुरवेशु इति वेद पूर्ण कालो एक गुणहानि है असंख्येज यदि भागोत्ति कट्टुनासंख्य भागहीनत्वं युक्तम् तत्थ असंख्येज्जानं गुणहानिनम् अवलम्भादो न उलम्बो असिद्धो। मैं जो देखना चाहती हूँ वो भी आगे है इसलिए मैं पूरा पढ़ रही हूँ। रदीय उक्कस्य दौवादो इति वेद उक्कस्य दौवम संख्येज गुणम यदि उवरी भण्डमाण अप्पा बहु अश्वत्तेन तथ असंख्येज्जानम गुणहानिनम उवलम्बादो। नऊ से वेद द्रव्येन भी संख्येज भागहीनेन होदव्यम, ये होना चाहिए वाली बात क्या लिखा है, नऊ से वेद द्रव्येन भी नंस वेद द्रव्येण भी संख्येज भागहीनेन होदव्यम, ये संख्यात्व भाग होना चाहिए कहो या संख्यात भागहीन होना चाहिए कहो, समझ में आता
तथा नपुसक वेद के द्रव्य को भी संख्यात्व भागहीन नहीं
संख्येज भागहीनेन ऊपर क्या लिखा है, संख्येज गुणहीन है ना, यानी संख्यात गुणाहीन, और नीचे संख्येज भागहीन है ना, यानी संख्यात भागहीन। नहीं निकालना चाहिए, संख्यात वे भागहीन होना चाहिए।
यानी हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन में जो भागहीन नहीं लिखा है वो नहीं चाहिए।
देखो तथा नपुसक वेद के द्रव्य को भी संख्यात वे भागहीन होना चाहिए। हाँ
एक शब्द से एक्स्ट्रा आवेगा,
हाँ फिर अर्थ बदल जाता
है, मतलब कनेक्शन नहीं लगता।
अभी ये तो हमने शंका पढ़ी, उसका कहना ही ऊपर जो लिखा था स्त्री वेद और नपुसक वेद को, और फिर नियम से कहा अनुत्कृष्ट होती है, वो अनुत्कृष्ट कितना होती है तो असंख्यात भागहीन प्रदेश विभक्ति होती है। उसके ऊपर इसने ऑब्जेक्शन दिया कि स्त्री वेद को संख्यात गुणाहीन होना चाहिए था और नपुसक वेद को संख्यात भागहीन होना चाहिए, ये उसकी शंका है बस। उसके लिए उसने जो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, अब हम आते 56 पृष्ठ पर समाधान। नहीं, क्योंकि कुरुवासी जीवों में और ऐशान कल्प के देवों में उत्कृष्ट किए गए स्त्रीवेद और नपुसक वेद के द्रव्य को नारकियों में उत्पन्न होकर उत्कृष्ट संकलेश द्वारा उत्कर्षित करके जिसने मिथ्यात्व के द्रव्य को उत्कृष्ट किया है, उसके स्त्रीवेद और नपुसक वेद का द्रव्य असंख्यात भागहीन होता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता। इसका कहना क्या था, इतना 33 सागर लंबे काल तक वो तो सब फिर जाना चाहिए था, अब यहाँ कहते उसने उत्कृष्ट संकलेश किया है नरक में आकर, तो उन परमाणुओं का उत्कर्षण हुआ है। जैसे हमेशा क्या होता है, नीचे ज्यादा परमाणु होते हैं ऊपर थोड़े होते हैं, निषेक रचना जो होती है, परंतु जो हमने संकलेश आवास नाम का आवास इसमें देखा था, उत्कर्षण अपकर्षण में देखो हमेशा नीचे के निषेकों में ज्यादा माल होता है, जब संकलेश होता है तो अधिक से अधिक परमाणु ऊपर चले जाते हैं और वहां रचना ऐसी हो जाती है, इस तरह से जहां संकलेश ज्यादा है वहां परमाणु अधिक ऊपर चले जाते हैं। यदि ऐसा होता तो जल निकल जाते और फिर लास्ट में थोड़े बचते तो कह सकते हैं कि संख्यात गुणाहीन संख्यात भागहीन, परंतु यहां तो उल्टा उसका जो रचना है निषेक रचना उसमें फर्क हो जाता है। फिर शंका, एक गुणहानि के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा 33 सागर काल के भीतर स्थित द्रव्य का उत्कर्षण करके समस्त द्रव्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण द्रव्य को ही वहां धारण करता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है। यानी इसने वही दोहराया ऊपर की बात, क्या कहते, एक गुणहानि के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा, कितने काल में ये सारा उत्कर्षण किया, तो गुणहानि के असंख्यात वे भाग काल में 33 सागर काल के भीतर स्थित द्रव्य का उत्कर्षण करके समस्त द्रव्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण द्रव्य को ही वहां धारण करता है, ये कैसे जाना। हमने देखा था ना वो कितना होता है, अनुत्कृष्ट कितना है, तो असंख्यात वा भागहीन है। समाधान, इसी सन्निकर्ष से जाना जाता है। दूसरे, गुणित कर्मांशिक जीव के उपरीतन स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है और अधस्तन स्थितियों के निषेक का जघन्य पद होता है, ऐसा जो वेदना सूत्र में कहा है उससे जाना जाता है कि असंख्यात वा भाग ही गलता है। देखो ये कहना चाहते हैं, जो हमने मैं अभी यहाँ फिगर ड्रॉ की है, हमेशा नीचे के नीचे बड़े होते हैं, ऊपर के कम होते हैं। वेदना खंड में क्या आया था? उपरीतन स्थिति, ये उपरीतन स्थिति के निषेक और ये अधस्तन स्थिति के निषेक। तो उपरीतन स्थिति के निषेकों का उत्कृष्ट पद होता है ना, उसमें ज्यादा परमाणु आ जाते हैं, इसको कहेंगे उत्कृष्ट पद होता है। और अधस्तन वालों में जघन्य पद होता है। स्थिति समाधान की स्थिति करना, स्थिति हुआ है, स्थिति करना, स्थिति। इसलिए उसका असंख्या तो भाग ही गलता है, इसलिए असंख्यात भाग हीन ही कह दिया। क्या किया था? उत्कृष्ट लेकर आया था, उत्कृष्ट का साथ नरक में आया है वो भी, तो उत्कृष्ट के साथ आया तो ऐसा आया था। अभी वहाँ संकलेश परिणामों के कारण क्या होता है, नीचे के बहुत सारा द्रव्य ऊपर चला जाता है और इस तरह से रचना होगी। तो असंख्यात वह भाग ही कम हुआ उसके लास्ट में, तो असंख्यात भाग हानि प्राप्त होगी। सामान्य रचना होती तो नीचे के निषेक बड़े होते तो अधिक माल गल जाता और बाद में कम रहता जो उसने ईशान में या भूभूमि में बांधा था। अब वो अधिक से अधिक लेके तो आया है नरक में और फिर संकलेश के कारण उसका उत्कर्षण होता रहता है, ऊपर के निषेकों में ज्यादा माल जाता है। तो जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट करने का समय आया तो इसमें भी असंख्यात भाग ही कम हुआ है उत्कृष्ट से। हाँ, गलना बहुत कम हुआ है, यानी इतने 33 सागर तक गल गया फिर भी वो असंख्यात भाग ही गल गया, ये बात बताना चाहते हैं। अब उन्होंने किसके साथ बताया? मिथ्यात्व 12 कषाय और मिथ्यात्व क्यों उत्कृष्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं? 12 कषाय और 6 नौकषाय। त्रिवेद नपुसक की बात उन्होंने बताई, वो नियम से अनुत्कृष्ट होता है। पहले में पहले का विभक्ति वाला होता है, 12 कषाय और 6 नौकषाय उनके बारे में बताया, उत्कृष्ट भी हो सकता है अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। त्रिवेद नपुसक वेद के बाबत कहा कि नियम से अनुत्कृष्ट होता है, कितना हीन होता है तो असंख्यात व भागहीन होता है। अब मिथ्यात्व के उत्कृष्ट के साथ अभी यहाँ 4 संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला होता है। जो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वो कितने हीन है तो संख्यात गुणी हीन होती है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की ये जरा अस्पष्ट प्रिंट हुआ है सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की नियम से अविभक्ति वाला होता है। क्या कहा? तो सादी वाला होगा ना? नहीं, ये इतने तीव्र संकलेश और इतना लंबा, उसको गुणित कर्मांशिक हमने किया है तभी तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट हुआ है। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट सम्यक्त्व के काल में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, मिथ्यात्व के ही काल में होगा और वो भी अविभक्ति वाला कर दिया इसको। उद्वेलन हो चुकी उसकी, उसको गुणित कर्मांशिक करते आए हैं हम, तो उसमें तो उसने वो एकेंद्रियों में भी बहुत काल बिताया, इसमें भी बहुत संकलेश परिणाम बार बार किए, वो सब कंडीशंस उसके अगर हम लागू करते हैं तो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश वाला जीव गुणित कर्मांशिक है, इसलिए वहाँ उसकी सत्ता नहीं है। नियम से अभिव्यक्ति वाला कहा, नियम लगाया उन्होंने। इसीलिए हमने पहले भी घटित किया था ना, गुणित कर्मांशिक वहां से निकला और उपशम सम्यक को प्राप्त किया, पहले हमने देखा था। जो सम्यक की उत्कृष्ट कब होती है ऐसा भी देखा था ना हमने, किसी मार्गणा में, तिर्यंशों में कब उत्कृष्ट होगी? तो हमने देखा था जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट इन्हें करके निकला है सातवें नरक से, तिर्यंश में जन्मा है, अभी दो चार भव करके फिर संगी पंचमी तिर्यंश हुआ और औक्षमिक समय तो किया, तो गुण संक्रमण करके फिर बाद में उपशम समय के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट होता है समय और समय मिथ्यात्व का मार्गणा में। और ओग में कहेंगे तो क्षपणा के काल में, ऐसा ही जब क्षपणा करेगा, हाँ जल्दी से जल्दी क्षपणा की, मनुष्य में आया 8 वर्ष में क्षपणा की, तब उसके हमने देखे थे। परंतु तिर्यंश में घटित करेंगे तो हमने औक्षमिक समय से प्राप्त किया ऐसा लिया। इसी प्रकार 12 कषाय और 6 नौकषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी जहाँ 12 कषाय का उत्कृष्ट है तब अन्य का क्या होगा, ये कहते इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेषार्थ मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 नौकषायों की शाह करना उसे। उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी एक समान है, इसलिए मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के अन्य प्रकृतियों के साथ जिस प्रकार का सन्निकर्ष कहा है, उसी प्रकार 12 कषाय और 6 नौकषायों की उत्कृष्ट प्रदेश रह गया प्रदेश विभक्ति वाले जीव के अन्य प्रकृतियों के साथ सन्निकर्षण बन जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए, 12 कषायों की उत्कृष्ट कर्मस्थिति 40 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है और 6 नौकषायों की उत्कृष्ट कर्मस्थिति संक्रमण से प्राप्त होती है, जो 40 कोड़ाकोड़ी सागर से एक आवली कम है। ये एक आवली कम क्यों कहा? बंधने के बाद आवली के पश्चात संक्रमण होता है, तो जिसने कषायों का उत्कृष्ट बंद किया है कितने 40 कोड़ाकोड़ी सागर का, एक आवली के बाद वो 9 कषाय में संक्रमित होगा। अतः मिथ्यात्व की गुणित कर्मांश विधि करते हुए जिस जीव के 30 कोड़ाकोड़ी सागर व्यतीत हो गए हैं, उसके आगे इन कर्मों की गुणित कर्मांश विधि करानी चाहिए। इस प्रकार कराने से मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय इन कर्मों की भी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके 40 कोड़ाकोड़ी में से 30 कोड़ाकोड़ी व्यतीत हो गए हैं, ऐसा जीव लिया और अब जाके उसने 40 कोड़ाकोड़ी का बंद किया, अन्यथा मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय इन कर्मों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति रहती है। यदि वहाँ से 40 कोड़ाकोड़ी नहीं करेंगे 30 कोड़ाकोड़ी व्यतीत होने के बाद, तो इसका भी अनुत्कृष्ट रहेगा, उत्कृष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार इन कर्मों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय मिथ्यात्व की भी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति घटित कर लेनी चाहिए। यह इन 19 प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा परस्पर सन्निकर्ष का विचार हुआ। अब शेष रहे कर्म, सो इन कर्मों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय 3 वेद और 4 संज्वलन कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति नहीं होती। किन कर्मों की उत्कृष्ट के साथ? मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 नौकषाय, तब इनकी नहीं होती। अतः उस समय इन 7 कर्मों की अनुत्कृष्ट प्रदेश शरेगिया विभक्ति कही है। जो गुणित कर्मांशिक जीव मिथ्यात्व आदि 19 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कर रहा है, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का सत्व नहीं होता, यह स्पष्ट ही है। शेष कथन परामर्श करके समझ लेना चाहिए। अब मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 नौकषायों के उत्कृष्ट के साथ अन्य का सन्निकर्ष बताया, क्योंकि उनका स्वामी एक ही है इसलिए उनका एक ग्रुप में रखा। अब सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, ये अभी पहले इस... हाँ, एक एक को अलग अलग, बारह का बारह एक साथ लिए गए, क्योंकि उसका आपस में संक्रमण भी हो जाता है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट बंध की वहाँ बात नहीं है, वो तो प्रदेश प्रदेश तो पहले से इकट्ठा करते करते आया है, यानी बहुत लंबे काल तक जाके वो गुणित कर्मोशिक हुआ है। देखो स्थिति विभक्ति में अलग था, स्थिति विभक्ति में तो उस समय कितना बंध किया, जिस समय बंध है उसी समय उसका उत्कृष्ट होता है स्थिति में, वहाँ निषेकों की संख्या हम गिनते हैं। प्रदेश में तो लंबे काल से करता आया है, उसके उत्कृष्ट योग भी था, उत्कृष्ट संकलेश भी था, उसने ये कैसे बंद किया अलग अलग उत्कृष्ट योग से, पहले भी कितना एक इंद्रियों में काल बिताया, क्या वो सब उसमें, सभी बातें उसमें ये देखे थे हमने, भवावास अद्धावास वो सब, योगावास संकलेशावास अपकर्षण उत्कर्षणावास, वो सब उसमें कंडीशंस लागू होते। अब सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट के साथ पहले हम ये सोचना है कि सम्यक मिथ्यात्व का जिस समय उत्कृष्ट है, किस समय है और कौन से जीव को है, आपको याद है सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब पाया जाता है किसी जीव को? हाँ, सपना के समय, उसके पहले यही कंडीशन लगाना, गुणित कर्मोशिक से आया है, तिर्यंच के थोड़े भाव करके मनुष्य में आया है और 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त में उसने एक सपना की है, तो मिथ्यात्व के सारे परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएंगे, यानी उसने जल्दी से जल्दी, यानी अभी इतने अभी गुणित कर्मोशिक आया तो वो तो औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त करेगा, फिर विसंयोजना करेगा, अंतर्मुहूर्त में वो क्षपणा भी करेगा, और क्षपणा में मिथ्यात्व का द्रव्य जब पूरा का पूरा अंतिम खाली उसकी खिर जाती है, सम्यक मिथ्यात्व में आती है, तब उसका द्रव्य मैक्सिमम है। ख्याल में है ना बात? स्वामी तो पहले सोचेंगे। देखो तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणीहीन होती है। तो जब सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है तो मिथ्यात्व की सत्ता है क्या? नहीं है। देखो जब स्थिति कांडक रूप से उसका गुण संक्रमण समाप्त हुआ तो एक आंवली इतने निषेक बाकी है मिथ्यात्व में, फिर उसका एक एक निषेक बाद में ट्रांसफर होता है, संक्रमित होता है, इसलिए मिथ्यात्व को लिया ना, उसकी प्रदेश विभक्ति नहीं है कहाँ कहाँ, इसी से समझ में आता है कि अनुत्कृष्ट है वहां पर, हमें ऐसा लगता है बहुत कम होनी चाहिए, परंतु उसकी जो आवली प्रमाण निषेक है उसमें भी पहले वो सारा अपकर्षण गुणश्रेणी वगैरह जो कुछ वहां हुए थे ना, तो उस निषेक में भी बहुत सारे परमाणु है, फिर भी एक एक करके वो संक्रमित हो गए, फिर भी मेजोरिटी जो है वो सारे संक्रमित हो गए, इसलिए मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट है, सम्यक्त्व का भी अनुत्कृष्ट है, क्योंकि सम्यक्त्व का उत्कृष्ट कब होगा? जब सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक रूप हो जाएगा अंतिम खाली रूप से। आठ कषाय और 8-9 कषायों की आठ कषाय में किसको छोड़ा? क्यों छोड़ा? अनंत अनुबंधी को। अनंत अनुबंधी की सत्ता ही नहीं है, जिस समय सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होता है अनंत अनुबंधी की सत्ता ही नहीं है, क्योंकि क्षपणा करने के पहले विसंयोजना कर देता है, यानी अनंता की सत्ता ही नहीं। और बाकी कब जघन्य होता है? आठ कषाय लिए नहीं आप? देखो किसको छोड़ना? अनंतानुबंधी को छोड़ना और संज्वलन को छोड़ना। हाँ, तो 8 कषाय और 8-9 कषाय उनकी, 8 कषाय में संज्वलन और अनंतानुबंधी को छोड़ा, और 8-9 कषाय में पुरुष वेद को छोड़ा। नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भागहीन होती है। ये अनुत्कृष्ट है परंतु उत्कृष्ट से कितना कम है तो असंख्यात भागहीन है, यानी असंख्यात वा भाग कम है। 4 संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो नियम से संख्यात गुणीहीन होती है, क्योंकि बाद में उसमें सारा संक्रमित होगा तब उत्कृष्ट होगा, तो संक्रमित के उसके 9 कषाय वगैरह सब उसी में चले जाएंगे, यानी वो संख्यात गुणा बढ़ने वाला, यहाँ पर जितनी उसकी सत्ता है उससे संख्यात गुणा होने वाली है, इसलिए यहाँ पर कितनी है तो संख्यात गुणाहीन है। उत्कृष्ट के साथ कंपेयर करें, सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के इसी प्रकार सन्निकर्ष करना चाहिए, क्या कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं? हाँ, मिथ्यात्व वहां है ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का तो पूर्ण हुआ, उसके जो आवली प्रमाण निषेक बाकी थे एक समय कम आवली, वो संक्रमित हुए, उसके बाद यहाँ के स्थिति कांडक पूरे हुए, अब इसके अंतिम फाली जब सम्यक रूप से हुई तो सम्यक मिथ्या तो भी आवली प्रमाण निषेक बाकी है, जब सम्यक की उत्कृष्ट होती है, इसलिए उसके उत्कृष्ट के समय सम्यक मिथ्यात्व की तो सत्ता है पर मिथ्यात्व की सत्ता नहीं, अनंतानुबंधी होने का सवाल ही नहीं। इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्व का सत्व नहीं होता तथा इसके सम्यक मिथ्यात्व की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणीहीन होती है। असंख्यात गुणीहीन है, असंख्यात वा भाग शेष है, असंख्यात गुणा वाला सब इसमें आ गया है। विशेषार्थ, जो गुणित कर्मांशिक जीव ये कंडीशन लागू होती है शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उसके मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के द्रव्य का सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण होने पर सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के द्रव्य का सम्यक्त्व में संक्रमण होने पर सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। ये वाक्य ख्याल में है, 2 को एक साथ बता दिया एक वाक्य में, सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब है, मिथ्यात्व की अंतिम फाली जो क्षपणा में गुणित कर्मांशिक से आया है और क्षपणा कर रहा है, मिथ्यात्व की अंतिम फाली जब संक्रमित होती है तो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है एक बात, और सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम फाली सम्यक रूप होती है तब सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट द्रव्य। इस प्रकार जिस समय सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है उस समय मिथ्यात्व और सम्यक तो दोनों का सत्व रहता है, सत्ता तो दोनों की पाई जाती है, मिथ्यात्व की तो है एक समय का मावली प्रमाण निषेक है उसके, ख्याल में भी नहीं बात, किंतु वह अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा असंख्यात गुणाहीन अनुत्कृष्ट रूप ही रहता है, क्योंकि उस समय तक मिथ्यात्व के द्रव्य में से तो असंख्यात बहुभाग प्रमाण द्रव्य का सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में संक्रमण हो लेता है, असंख्यात बहुभाग चला गया है तो असंख्यात वा भाग रह गया, तो असंख्यात गुणाहीन हुआ, अपने उत्कृष्ट से असंख्यात गुणाहीन हुआ तथा सम्यक्त्व में अभी सम्यक मिथ्यात्व के असंख्यात बहुभाग प्रमाण द्रव्य का संक्रमण नहीं हुआ है, असंख्यात गुणाहीन कहने का प्रयोजन बता रहे, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का द्रव्य अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा, ये सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा नहीं लगाना, कितना हीन है ये जो हम कहते हैं, तो सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व का कितना हीन है वो नहीं बता रहे। सम्यक मिथ्यात्व का अपना जहाँ कहीं उत्कृष्ट होता है उसकी अपेक्षा ये अभी कितना कम है उसकी बात बता रहे। इसलिए अपने उत्कृष्ट शब्द डाला, असंख्यात गुणाहीन कहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के समय सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा असंख्यात गुणाहीन घटित कर लेना चाहिए। असंख्यात गुणाहीन कैसे हुआ? क्योंकि वो सारा असंख्यात बहुभाग तो संक्रमित हो गया, अभी असंख्यात वा भाग ही शेष रह गया है। अवली प्रमाण जो उसके काल बाकी है उसमें निषेकों की संख्या एक समय कम अवली है, और जितना था उसका असंख्यात बहुभाग तो संक्रमित हो गया है। इसके मिथ्यात्व का सत्व नहीं रहता यह स्पष्ट ही है, शेष कथन सुगम है। अब स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति करने वाले जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 7 नौ कषाय की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, ये तो समझ सके ऐसी बात है, क्योंकि हमने देखा था निगुणित कर्मांशी काया है और फिर भोग भूमि में पल्ले के असंख्यात भाग काल में स्त्री वेद को पूर्ण किया और वहीं पर उसका उत्कृष्ट लेना है, अभी उसका और कहीं नहीं ले जाना। नहीं नहीं नहीं, कहीं होता ही नहीं, यहीं पर उसका यही अंतिम समय है, बंध का अंतिम समय उसका, जो स्त्री वेद को पूर्णे का अंतिम समय वहाँ उसका उत्कृष्ट है। अब बाय दैट टाइम जो गुणित कर्मांशिक रूप से आया था तो उस समय उसका मिथ्यात्व कम होगा कि नहीं होगा? अन्य सभी कम हो गए ना वहाँ पर, गुणित कर्मांशिक नरक में था तब उत्कृष्ट था, अब डायरेक्ट तो भोग भूमि में नहीं आएगा, बीच में तिर्यंच के दो चार भाव करेगा, या तो मनुष्य या तिर्यंच होकर भोग भूमि में आएगा तीन पल्ले वाली, हाँ उतने उसका कम हुआ है, इसलिए मिथ्या तो भी वहाँ गल गया है, थोड़ा उत्कृष्ट नहीं रहा। तो कितना कम हुआ? असंख्यातवा भाग कम हुआ, थोड़े निकल गए वहाँ जो मैक्सिमम करके आया था, इसलिए असंख्यात भाग ही कहा। वो नियम लगाए मिथ्या तो 12 कषाय और 7 नौ कषाय का नियम से हीन करता है। चार संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो संख्यात गुणहीन होती है। इसी प्रकार नपुसक वेद के मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसकी मुख्यता से उसको कहाँ लेना? वो ईशान में लेना अंतिम समय में, जब उसकी उत्कृष्ट होती है बाय दैट टाइम मिथ्या तो बार वो सारे अन्य कषाय वगैरह वो अनुत्कृष्ट हो जाते हैं, और संज्वलन वो भी अनुत्कृष्ट है तो संख्यात गुणाहीन है, और वो पहले वाले वो असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात वे भागहीन विशेषा। जो जीव 12 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति करके यथाविधि भोग भूमि में उत्पन्न होता है, उसके पल्ले के असंख्यात का भाग प्रमाण काल जाने पर स्त्रीवेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। उस समय मिथ्यात्व आदि 20 प्रकृतियों की प्रदेश विभक्ति अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा असंख्यात्वे भाग प्रमाणहीन हो जाती है, क्योंकि उस समय तक इनका इतना द्रव्य उनके द्रव्य का इतना द्रव्य अधस्थिति गलना आदि के द्वारा गल जाता है, और जिनका अन्य प्रकृति रूप संक्रमण संभव है उनके द्रव्य का संक्रमण भी हो जाता है, यानी संक्रमण से भी नष्ट हो जाता है जिनका संक्रमण संभव है, और ऐसे तो गल ही जाता है बाकी तो। फिर भी यहाँ पर अधस्थिति गलना के द्वारा गलने वाले द्रव्य की मुख्यता है, यहाँ संक्रमण की मुख्यता नहीं ली है, गलने वाले द्रव्य की मुख्यता ली। नपुसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति ऐशान कल्प में होती है, उसकी मुख्यता से भी इसी प्रकार सन्निकर्ष प्राप्त होता है, इसलिए उसे स्त्रीवेद की मुख्यता से कहे गए सन्निकर्ष के समान जानने की सूचना की है, शेष कथन स्पष्ट है। समानता किसमें है कि जब इसका उत्कृष्ट है तब अन्य का अनुत्कृष्ट है, कितना अनुत्कृष्ट है तो अपने उत्कृष्ट से असंख्यातवे भाग से हीन है, इस कथन में समानता है। उसका स्वामी वो भोग भूमि का जीव है और इसका स्वामी वो ऐशान वाला है। बेट ख्याल में आती है ना बात कि बहुत कठिन हो रहा है। हाँ, यानी हम स्वामित्व को सोचेंगे तो ये जब तक इसका उत्कृष्ट होता है तब उसका गल जाता है थोड़ा। अब पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, ये कब होता है उत्कृष्ट पुरुष वेद का? हाँ, जब स्त्री वेद की अंतिम फाली पुरुष वेद में संक्रमित होती है तब उसकी उत्कृष्ट है, यानी क्षपणा के समय। जब इसकी उत्कृष्ट है तब मिथ्या तो उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट होगा? हाँ बंदा भी, हाँ होएगा ही नहीं, बहुत अच्छा। न मिथ्यात्व होगा, नहीं दर्शन मोह की कुछ नहीं होगी, अनंतानुबंधी भी नहीं होगा, आठ कषाय हो गए कि नहीं हो गए? अरे वो भी नहीं हो गए, क्योंकि उसकी क्षपना पहले हो चुकी है, एक क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ है जी। हास्य रति जो है वो तो उसके साथ रहेगी, अनुत्कृष्ट रूप से रहेगी वहां पर, यानी इसके साथ ना नपुसक वेद रहा अभी, ना स्त्री वेद रहा। स्त्री वेद में वह अंतिम फाली इसमें जा रही है और वहां नया बंध तो पुरुष वेद का हो रहा है, अभी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से सोचना है कि इसके पहले जो क्षपणा हो चुकी है उनकी यहाँ सत्ता ही नहीं है। तो पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के चार संज्वलन की नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि पुरुष वेद का उत्कृष्ट होने के बाद उसकी इसका सारा द्रव्य क्रोध में चला जाएगा, तब क्रोध का उत्कृष्ट होगा। तो अभी कितना है क्रोध का? अनुत्कृष्ट है। कितना अनुत्कृष्ट है? संख्यात गुणाहीन है, क्योंकि अभी संख्यात गुणा होने वाला है, दो गुना तो नक्की हो जाएगा ना, नौ कषाय का द्रव्य सब कषाय में आ जाएगा, डबल तो हो जाएगा। क्यों? जब बंटवारा हुआ था तो कषाय और नौ कषाय में इक्वल बंटवारा हुआ था, आधा नौ कषाय में जाता है आधा कषाय में जाता है, अब नौ कषाय का पूरा क्रोध में आया है, यानी डबल से भी बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि कषाय का द्रव्य तो चार में बढ़ गया था, वो उस वन फोर्थ में मान लेते हैं, वहां चार दिए और चार में एक एक दिया और वो सारे चार नौ कषाय में दिए, अभी यानी वो वन फोर्थ यानी वन उसकी वैल्यू वन देखो हम ऐसा देखेंगे, जो कषाय और नौ कषाय में आता था ना द्रव्य, मोहिनी का बंद होता है तो कषाय में आधा और नौ कषाय में आधा, अभी हम दर्शन मोहिनी की बात ही नहीं कर रहे, चारित्र मोह की, एक कषाय में आया और ये नौ कषाय में गया, आधा आधा गया। अब नौ कषाय, ये कषाय वाला चार में विभाजित हुआ, तो इसकी वैल्यू हम चार लेंगे तो इसकी भी वैल्यू चार लेंगे, इसमें क्रोध में एक, मान में एक, माया में एक और लोभ में एक, और नौ कषाय का सब मिलकर चार। अब जब नौ कषाय की सपना पूरी हो जाएगी, पुरुष वेद और नौ कषाय वो सब चार इसमें आके मिलेंगे, तो इसको एक से लेकर चार हो जाएगा, पांच, चार गुना यानी पांच गुना बढ़ गया, एक था तो पांच हो गया, तो संख्यात गुना बढ़ जाएगा नहीं, ये संख्यात गुना बढ़ जाएगा। तो अभी कितना है वो? अभी एक है, वो पांच होगा, यानी संख्यात गुना बढ़ेगा, यानी जब पुरुष वेद का उत्कृष्ट है तो ये संख्यात गुणाहीन है, अपने उत्कृष्ट के अपेक्षा संख्यात गुणाहीन है। छह नौ कषायों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणहीन होती है, क्योंकि अभी छह नौ कषाय थोड़े ही बाकी है, पुरुष वेद की सात की बात चल रही है, पुरुष वेद के साथ उसका जब संक्रमण चल रहा है तो नौ कषायों का भी चल रहा है, पुरुष वेद के उदय के साथ उसकी क्षपणा पूरी होती है। स्त्री वेद सही चढ़ने वाले के लिए अलग, नपुंसक वेद के सही चढ़ने वाले की अलग बात है, क्योंकि उसकी क्षपणा पूरी होने के बाद उसका संक्रमण शुरू होता है। परंतु पुरुष वेदी वाले जीव के ध्यान में आई बात, पुरुष वेद और नौ कषायों का संक्रमण पहले से चल रहा था जब पूर्व में बंधा था, लास्ट में केवल नवक समय प्रबद्ध का ही संक्रमण चलता है जब वो अपगत वेदी हो गया, इसलिए उसका भी एक निषेक बाकी है। कहो जब इसका उत्कृष्ट है, नहीं उत्कृष्ट पहले होता है ना, स्त्री वेद का संक्रमण होता है तब, तो छह नौकशायन की अनुत्कृष्ट है असंख्यात गुणीहीन होती है। क्रोध संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के पुरुष वेद और संज्वलन प्रकृतियों के सिवा शेष प्रकृतियों का नियम से असत्व होता है। क्या कहते हैं, जब क्रोध की उत्कृष्ट है तो सत्ता किसकी किसकी है, पुरुष वेद की भी है और संज्वलन भी है। पुरुष वेद क्यों सत्ता में है, क्योंकि वो नवक समय प्रबद्ध है, वहां पर पहले का तो संक्रमित हो गया है पूरा, और नवक समय प्रबद्ध है, उसके एक एक समय की जो बंधावली अपनी अपनी पूरी करके उसका संक्रमण चलता रहेगा, तो शेष का तो नियम से असत्व होता है। तीन संज्वलन की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो संख्यात गुणीहीन होती है। अब ऐसे ही इसको सोचना, जब क्रोध का उत्कृष्ट ने पांच हुआ है उस समय बाकी एक एक ही है ना, ये तो हम समझाने के लिए संख्या ली है, उसमें थोड़ा वेरिएशन होगा उसकी बात नहीं है। तो ये जब पांच हुआ तो बाकी एक एक पर है, और ये जब ये पांच इसमें मिल जाएगा तो ये छह हो जाएगी, तभी छह के बदले यहाँ एक है, तो ये संख्या गुणाहीन है। कल में बात, जब क्रोध सारा इसमें चला जाएगा तो इसमें पांच हो जाएंगे, जो ये सारा चले जाएगा तो ये इसमें छह और मिलेंगे, इसमें सात और मिलेंगे, तो ये बाकी सभी जो है वो एक पर है, और क्रोध अभी पांच पर पहुंच गया, क्योंकि नौ कषाय को हमने चार वैल्यू दी है और पूरे सब क्रोधों में, क्रोध मान माया लोभ सब में मिलकर चार के, नौ कषाय के चार सारे क्रोध में आए, तो क्रोध एक से चार, एक से और चार मिल गए तो पांच पर चला गया, और बाकी सब एक एक पर है। तो ये जो एक है जब इसका उत्कृष्ट हो जाएगा तो क्रोध सारा चार प्लस एक पांच क्रोध के इसमें मिल जाएंगे, तो ये छह होने वाला है, तो अभी कितना कम है, तो संख्यात गुणाहीन है। संख्यात गुणाहीन का अर्थ होता है संख्यात वा भाग है अभी, पुरुष वेद की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणीहीन होती है, क्योंकि पुरुष वेद सारा संक्रमित हो चुका है, अब केवल नवक समय प्रबद्ध बाकी है। मान संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मान की कब होती है, जब क्रोध के परमाणु सब मान रूप हो जाएंगे, उस जीव के संज्वलन प्रकृतियों के सिवा पूर्व की शेष सब प्रकृतियों का नियम से असत्व है। तो जब मान का उत्कृष्ट है तब क्रोध की सत्ता है कि नहीं है, है, क्योंकि उसका नवक समय प्रबद्ध है, वहां असंख्यात गुणाहीन वाला होगा वहां पर, क्रोध, क्योंकि क्रोध क्रोध की वो बड़ी फाली अंतिम फाली तो फिर गई उसमें, परंतु उसके नवक समय प्रबद्ध जो है किसके, मान के नवक समय प्रबद्ध।
आपने क्रोध की सत्ता पूछी,
क्रोध की सत्ता है ना, देखो उच्चिष्टावली बाकी रहती है उसमें, नवक समय प्रबद्ध है, उच्चिष्टावली बाकी है। हमने जब पुरुष वेद को इसमें लिया था तो पुरुष वेद के तो नवक समय प्रबद्ध लिया था, अब क्रोध की अंतिम इसमें चली जाती है तो उसमें उसके नीचे उसके नवक समय प्रबद्ध भी है और उसके एक उच्चिष्टावली भी है। जब उसकी उच्चिष्टावली बाकी रहती है तब मान की नीचे रचना होती है एक अंतर्मूल प्रमाण और इसका उदय चालू हो जाता है और इसकी अंतिम पाली उसमें संक्रमित हो गई तो इसके पास एक उच्चिष्टावली है और नवक समय प्रबद्ध थोड़ा है। जब मान का उत्कृष्ट है तो संज्वलन बिना सबकी सत्ता नहीं है, वेदों की सत्ता भी नष्ट हो चुकी है। यहां लिखा ना क्रोध बिना नहीं लिखा था, देखो क्या कहते हैं, मान संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के संज्वलन प्रकृतियों के सिवा पूर्व की शेष सब प्रकृतियों का नियम से असत्व होता है। अब उस समय मान वाले के माया और लोभ संज्वलन की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो संख्यात गुणहीन होती है, क्योंकि अभी वो एक एक पर है और मान है वो छह पर पहुंच गया, बराबर। और क्रोध संज्वलन की नियम से अनुत्कृष्ट होती है जो असंख्यात गुणहीन होती है। ये असंख्यात गुणहीन क्यों कहा, क्योंकि वहां पर उच्चिष्टावली प्लस नवक समय प्रबद्ध बाकी। क्रोध का जब तक उदय था तब तक क्रोध का बंध भी था, माया। अब ये तो मान के उत्कृष्ट है तब बता दिया उन्होंने, मान का उत्कृष्ट है तब क्रोध की भी सत्ता है, माया और लोभ की भी सत्ता है। माया और लोभ है वो संख्यात गुणाहीन है और क्रोध है वो असंख्यात गुणाहीन है। अब जब माया का उत्कृष्ट होगा तो सत्ता किसकी रहेगी, जब माया का उत्कृष्ट होगा तो सत्ता किसकी रहेगी, मान की और लोभ की। अभी क्रोध नहीं रहा तो अभी मान की कितनी होगी, तो असंख्यात गुणाहीन होगी और लोभ की संख्यात गुणाहीन होगी, क्योंकि बाद में उसमें उत्कृष्ट होने वाली है। तो यही कहते माया संज्वलन की उत्कृष्ट विभक्ति वाले जीव के लोभ संज्वलन की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो संख्यात गुणहीन होती है, क्योंकि लोभ की एक पर है और अभी माया की सात पर पहुंच गई है। ख्याल में है ना, मान संज्वलन की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणहीन होती है, क्योंकि इसके भी अभी उच्चिष्टावली और नवक समय प्रबद्ध है। लोभ संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के अभी इसके साथ सत्ता किसकी पाई जाएगी, हाँ, लोभ की। जब उत्कृष्ट हो जाती है तो सत्ता किसकी है, माया की है, माया की अनुत्कृष्ट है और वो कितनी होगी, तो असंख्यात गुणाहीन हो जाएगी, क्योंकि उसकी उच्चिष्टावली बाकी है और उसका जो नवक समय प्रबद्ध है। हाँ, क्रोध मान माया पुरुष वेद में वैसा नहीं होता है, वो सवेद है अपगत वेदी, उसका उदय मिट जाता है। यहाँ भी उदय मिट गया है, उदय मिटने पर भी उसके आवली प्रमाण निषेक बाकी है, वैसी रचना उसमें नहीं होती वेद में, क्योंकि ये सजातीय है ना, तो वो सजातीय होने से एक एक निषेक संक्रमित होता है। क्रोध की उच्चिष्टावली है और मान का उदय चल रहा है और क्रोध का एक एक निषेक मान रूप होकर उदय में आ रहा है। पुरुष वेद में उदय था मिट गया, अब जो कुछ है वो नवक समय प्रबद्ध है, वो तो ऑलरेडी पहले ही निकल गई ना। हाँ, उसमें भी नहीं सोचे थे ना मिस्त्री वेद ने पुस्तक वेद में कि उसमें लिया था, क्योंकि वो अपने अपने उदय से चढ़े थे ना उसकी बात की। देखो, लोभ संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के पुरुष वेद के, हाँ स्त्री वेद के जो संक्रमण होता है पुरुष वेद रूप से होता है। हाँ क्योंकि पुरुष वेद का काल ज्यादा है ना, वो तो जब लोभ की उत्कृष्ट है तब माया संज्वलन की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, वो कितनी होगी? असंख्यात गुणाहीन होगी। विशेषार्थ, यहाँ पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय 6 नौकषाय और 4 संज्वलन का, क्रोध संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय पुरुष वेद और मान आदि 3 संज्वलन का, मान संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय शेष 3 संज्वलनों का, माया संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय मान संज्वलन और लोभ संज्वलन का, तथा लोभ संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय माया संज्वलन का भी सत्व रहता है। इसलिए जहाँ जिन प्रकृतियों का सन्निकर्ष संभव है वह कहाँ है? मात्र विवक्षित उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति जिन प्रकृतियों के अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली का पतन होने पर होती है, उन प्रकृतियों की प्रदेश विभक्ति असंख्यात गुणीहीन पाई जाती है, क्योंकि उसका अंतिम स्थिति कांडक उस रूप हो गया, जैसे क्रोध का है वो मान रूप हो गया। अब क्रोध के जो बच्चे हैं तो असंख्यात गुणाहीन बच्चे हैं, और जिन प्रकृतियों के स्थिति कांडकों का घात होना शेष रहता है उनकी प्रदेश विभक्ति संख्यात गुणीहीन पाई जाती है। संख्यात गुणीहीन क्योंकि अभी उसमें वो सारा माल आने वाला है, तब उसकी उत्कृष्ट हो जाएगी। हम ऐसे सोचेंगे, जब मान का उत्कृष्ट है तब माया और लोभ का अनुत्कृष्ट है, हमने उसको एक एक संख्या दी थी, उसका जब उत्कृष्ट होगा तो 7 और 8 पर चले जाएंगे। ये तो ओब से बात हुई, अब आदेश से। नारकियों में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला जीव, अब ये नारकी है इसलिए यहीं पर उसको सोचना है। जब हम ओग से बात करते थे तो इसे वेदों की बात की थी या अन्य अन्य, तो जब जहां वो उत्कृष्ट होता है उसको लिया था, अब नारकी रहते हुए उसको देखना है हमको। वो आदेश है ना, मार्गणा है, वो मार्गणा बदले बिना सन्निकर्ष देखना है। तो नारकियों में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला जीव 16 कषाय और 6 नौ कषायों की नियम से विभक्ति वाला होता है, किंतु वह इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला भी होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला भी होता है। संज्वलन को भी लिया है, क्यों? वहां तो क्षपणा इसमें कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए उसमें तो था, पर यहाँ उत्कृष्ट भी हो सकती है अनुत्कृष्ट भी हो सकती है, क्योंकि उसमें तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट करने के लिए 70 कोड़ा कोड़ी की बात की थी और ये 40 कोड़ा कोड़ी वाले हैं, तो इनका उत्कृष्ट करना कब से शुरू होता है डिपेंड्स ऑन दैट। ये बात आई थी ना 30 कोड़ा कोड़ी के बाद उसका भी उत्कृष्ट करना शुरू किया, तो इसके उत्कृष्ट भी हो सकता है अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। और यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला होता है तो उसके इनकी दो स्थान पतित अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, या तो अनंत भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है या असंख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, यानी उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, या तो अनंत वा भाग ही कम है या असंख्यात वा भाग ही कम है। 3 वेदों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, ये नारकियों में उसकी उत्कृष्ट कब होती है? पहले समय में होती है, जो असंख्यात भागहीन होती है ये असंख्यात करना संख्यात हुआ है, असंख्यात भागहीन होती है, क्यों करना उसको? मिला अब कहते यह यानी यह जीव सम्यक्त्व और सम्यक् मिथ्यात्व के सत्व से रहित होता है। ये हमने पहले देखा था गुणित कर्मांशिक है तो यह सम्यक्त्व से रहित है, वो सत्व से भी रहते हैं। इसी प्रकार 16 कषाय और 6 नौ कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी अभी मिथ्यात्व का उत्कर्ष के साथ लगाया, अभी 16 कषाय और 6 नौ कषायों के उत्कृष्ट होते हैं तब अन्य की क्या पोजीशन है, तब हम कहेंगे मिथ्या तो उत्कृष्ट भी होता है अनुत्कृष्ट भी होता है, वो सब उसमें गठित करेंगे। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 12 कषाय और 9 नौ कषायों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भागहीन होती है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक्त्व की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। देखो सम्यक्त्व की उत्कृष्ट में हम कृतकृत्य वेदक को लेंगे, हाँ गुणित कर्मांशिक से आया है मनुष्य में उत्पन्न होने, जल्दी में क्षपणा की है उसके और फिर मरकर नरक में आया है तो उसका पहला समय लेना, वो तो पहले नरक में घटित होगा। अभी समय मिथ्यात्व की उत्कृष्ट कब होगी इसको सोचना है, कब प्राप्त किया। देखो गुणित कर्मांशिक है अभी सातवें नरक के अंत में आया है तो अभी उत्कृष्ट बनने के पहले ही पहले औषमिक सम्यक तो प्राप्त किया उसने, तो मिथ्यात्व को बहुत ज्यादा करते आया है ना, अभी सर्वोत्कृष्ट तो नहीं किया, उसके एक अंतर्मुख पहले उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो औक्षमिक समय तो प्राप्त किया गुण संक्रमण से और फिर विद्या संक्रमण से, औक्षमिक समय तो के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट हो गया समय मिथ्यात्व का। उस समय समयत्व का उत्कृष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि समयत्व का उत्कृष्ट नारकियों में हमने कृतकृत्य वेदक वाले को देखा था, इसलिए जब इसका उत्कृष्ट है तब उसका अनुत्कृष्ट है। बात ख्याल में आती है ना, उत्सम समय को के अंतिम समय में मिथ्यात्व प्रकृति में से ही समय मिथ्यात्व तैयार हुई है, हाँ होगी पर वो अनुत्कृष्ट ही होगी ना, एक ही समय में दोनों प्रकृति तैयार हुई है उसको उत्कृष्ट तो नहीं कहेंगे। हाँ हमेशा समय मिथ्यात्व में तो ज्यादा ही रहता है, जितने परमाणु समय मिथ्यात्व में आते हैं उससे असंख्यात भाग प्रमाण परमाणु सम्यक को प्रकृति में आते हैं, उसके दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे हो जाएंगे। हाँ मिथ्या तो में से उसमें दो में आते जब तक सम्यक को चलता रहता है तो मिथ्या तो के परमाणु इन दो रूप होते रहते हैं। सम्यक के काल में क्या हुआ था, पहले गुण संक्रमण हुआ था फिर विद्या संक्रमण भी हुआ था औक्षमिक समयत्व के काल में, वहां भी होता रहता है, वहां तो उसका एक एक निश्चय उदय रूप होते होते इस रूप होते होते में अधस्थिति गलना की मुख्यता है। तो देखो जब सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है तो सम्यक्त्व की तो हमेशा अनुत्कृष्ट ही रहेगी, एक बार उस समय मिथ्यात्व का क्या होगा, उत्कृष्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता क्योंकि गुणित कर्मांश होने के पहले ही उसने सम्यक तो प्राप्त किया है। अब सम्यक तो प्राप्त किया ने कौन सा सम्यक तो किया था, औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त किया है, औक्षमिक सम्यक में तो वहाँ तो करण लब्धि आदि में तो बहुत माल खिर गया है उसका, गुणश्रेणी उसकी भी हुई है मिथ्यात्व के परमाणु की भी, और फिर उक्षम सम्यक तो प्राप्त होने पर मिथ्यात्व में से कितना ही माल सम्यक मिथ्यात्व में आया है तो मिथ्यात्व तो अनुत्कृष्ट ही रहेगा। अन्य भी कर्मों में स्थिति कांडक वगैरह हुए थे वहां पर, उनका भी अनुत्कृष्ट हो जाएगा। तो मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की सबको लिया, नियम से अनुत्कृष्ट, हाँ
असंख्यात गुणी ही नहीं।
सम्यक की बात पूछ रहे, असंख्यात गुणाहीन इसलिए कहा, यानी इसका असंख्यात भाग यहाँ पर है, क्योंकि क्या होता है सम्यक मिथ्यात्व कितना है उससे तो असंख्यात गुणा है, और जब कृतकृत्य वेदक में था तो सारे सम्यक मिथ्यात्व उस रूप हो गए, मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु यानी पूरा दर्शन मोनी का द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप हो गया है, इसलिए वहाँ उत्कृष्ट है। उस उत्कृष्ट की अपेक्षा इसको लेना है, सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा सम्यक को नहीं कहना, हाँ अपने उत्कृष्ट के इससे कितना कम है इतना लेना है। सम्यक का उत्कृष्ट कब है, कृतकृत्य वेदक के पहले समय, उस उत्कृष्ट की अपेक्षा यहाँ पर उसका द्रव्य कितना होगा, तो वही था नहीं लेना, वहां तो उससे कम हो गए, वो अपने उत्कृष्ट से कितना है वो भी सोचना है। तो यहाँ पर जिस समय सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है तब मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय, नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भागहीन होती है, क्योंकि अभी उत्कृष्ट होने जा रहा था उसके बदले सम्यक को प्राप्त किया है तो उसका असंख्यात भाग वहां खिल गया, असंख्यात भागहीन हो गया। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, अब ये नारकी में उत्कृष्ट करना है तो यहाँ वो भोग भूमि वाला यहाँ तो नहीं ले सकते, हाँ उसके बाद जब नरक में उत्पन्न हुआ है उसको ले सकते हैं। मिथ्यात्व 16 कषाय और 8-9 कषायों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भागहीन होती है, क्योंकि वो स्त्री वेद का उत्कृष्ट करके नरक में आया है ऐसा जीव लेना, हाँ पहले समय में होगा। इसी प्रकार नपुंसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इसके सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की, असंख्यात गुणी हीन अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, क्योंकि उत्कर्षण के बिना देवों में असंख्यात गुणहानियां गल जाती है, उत्कर्षण के बिना का अर्थ क्या है, जहां संकलेश परिणाम है वहां उत्कर्षण होता रहता है, और देवों में ऐसे संकलेश परिणाम नहीं है तो उत्कर्षण बिना इतनी असंख्यात गुणहानियां गल जाएगी। फिर शंका, गुणित कर्मांशिक जीव के द्वारा मिथ्यात्व के द्रव्य का उत्कर्षण करके और उसे उसी रूप में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रांत कर देने पर इनका द्रव्य असंख्यात भागहीन क्यों नहीं होता है, नहीं क्योंकि सम्यक दृष्टि के अपकर्षण के द्वारा अधस्तन गोपुच्छाओं के स्थूल हो जाने से असंख्यात गुणहानियों के गल जाने पर असंख्यात गुणहानि देखी जाती है। क्या कहते हैं, जहां संकलेश परिणाम है वहां उत्कर्षण होता है और थोड़ी ही हानि होती है, और जहां सम्यक दृष्टि होता है वहां अपकर्षण होता है और असंख्यात गुणहानियां गल जाती है, ये बात बताना चाहती हूं। हाँ देखो देखो यहां 59 पेज पर, हाँ नीचे हाँ देखो, पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए, यानी जहाँ पुरुष वेद का उत्कृष्ट है वहाँ अन्य की पोजीशन क्या है मिथ्यात्व आदि वो सब अनुत्कृष्ट हो गए, बराबर है, क्योंकि पुरुष वेद का भी उत्कृष्ट कब है, उसने वो स्वर्गों में पल्ले की आयु वाले देवों में उसने उत्कृष्ट किया, फिर कालांतर में वो यहाँ आया तो पहले समय में होगा। अब विशेषता कहाँ है उसके, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की, कितनी होती है? असंख्यात गुणी हीन अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व असंख्यात गुणाहीन है, किससे? उसके अपने उत्कृष्ट से। हाँ तो उसमें क्या कहते, क्योंकि वो देवों की बात है, क्योंकि उत्कर्षण के बिना देवों में असंख्यात गुणहानियां गल जाती है, असंख्यात गुणहानि गल जाती है। देखो जब क्षपित गुणित कर्मांशिक होता है तो सभी कर्मों में उत्कर्षण हो जाता है। उत्कर्षण के लिए एक ही एक कंडीशन की उसका बंद होना चाहिए, बंद होने वालों का उत्कर्षण होता रहता है। अब यहाँ क्या कहते हैं, असंख्यात गुणाहीन हो गई है, क्योंकि वो तो पहले समय में घटित करना है ना। पुरुष वेद का उत्कृष्ट कब है? वो पहले समय में, तो उसके पहले वो कहाँ था? तो देवों में था। और ये मिथ्या दृष्टि लिया है जी, तो मिथ्या दृष्टि जीव लिया है तो हाँ नरक में आया है, पर उसके पहले वो देव में था। देव से डायरेक्ट तो नहीं आया है, परंतु देव में जहां उसने पुरुष वेद का उत्कृष्ट किया था उस समय की बात चल रही। तो जब पुरुष वेद का उत्कृष्ट कर रहा था तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की तो असंख्यात गुणाहीन हो जाए, क्योंकि उसकी तो जब बीच में सम्यक तो भी प्राप्त किया है तो भी उसकी उद्वेलना वगैरह चल रही है, तो उसके असंख्यात गुणहीन है। किससे? उसके अपने उत्कृष्ट से। उसका अपना उत्कृष्ट कब है? सम्यक्त्व के बारे में तो कृतकृत्य वेदक है, और सम्यक मिथ्यात्व के बारे में तो सैत्की सागर के अंत में जब औक्षमिक समय प्राप्त किया तब है। उसकी अपेक्षा से यहाँ पर उसका द्रव्य कितना है? सत्ता होगी तो असंख्यात गुणाहीन होगी। अब देवों में क्या होता है, असंख्यात गुणहानि सभी कर्मों में लगाना। जहाँ नरकों में संकलेश परिणाम है वहां हमने देखा ना उत्कर्षण होता रहता है, उत्कर्षण होकर ऐसी रचना होती है, और देवों में ऐसी रचना रहेगी। और अपकर यानी नीचे की अधिक अधिक मान चला गया, अधिक चला जाएगा, तो कहते असंख्यात गुणहानियां गल जाती है। असंख्यात गुणहानियों का अर्थ क्या है? देवों की आयु तो पल्लों की सागरों की होती है, पल्ले भी होगी और एक गुणहानि पल्ले के असंख्यात में भाग होती है, तो पल्ले प्रमाण जो उनकी आयु है उसमें कितनी गुणहानियां चली जाएगी? असंख्या चली जाएंगी। एक पल्ले प्रमाण आयु लिए ना हमने पुरुष वेद के लिए, और एक गुणहानि का प्रमाण तो पल्ले का असंख्यात भाग है, तो असंख्यात गुणहानि गलने के द्वारा निकल जाएगी उनकी। इसलिए कितना हुआ वहां? असंख्यात गुणहीन हो गया, ये बात बताना चाहते। तो उन्होंने पूछा था कि ऐसे जीव को मिथ्यात्व का तो उत्कर्षण हुआ है अभी नरकों में, और फिर उसका संक्रमण होकर सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार हुई है, तो उसका द्रव्य ज्यादा कहो, सम्यक दर्शन प्राप्त कराओ और फिर उसका ज्यादा करो। तो कहते कि सम्यक दृष्टि के अपकर्षण के द्वारा, यानी सम्यक दृष्टि में क्या होता है? अपकर्षण होता है। तीव्र संकलेश परिणाम में क्या होता है? उत्कर्षण होता था। नीचे की गोपुच्छा का माल ऊपर की गोपुच्छाओं में जाता था, निषेकों में। सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या होता है? अपकर्षण होता है, और नीचे की गोपुच्छा जो है, गोपुच्छा यानी निषेक, अधस्तन यानी नीचे के निषेक स्थूल होते हैं क्या, उसमें द्रव्य ज्यादा आ जाता है और उसकी निर्जरा हो जाएगी। असंख्यात गुणहानियों के गल जाने पर असंख्यात गुणहानि देखी जाती है, यानी उसके ऊपर के निषेकों में बहुत सारे माल नीचे आते हैं, और जो एक समय प्रबद्ध इतना जो गल रहा था वो अधिक मात्रा में गल रहा है, इसलिए वहाँ गलना ज़्यादा है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, क्योंकि पहली पृथ्वी में भी सम्यक्त्व का भंग बन जाता है कृतकृत्य वेदक का। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात भागहीन होती है। क्योंकि सम्यक्त्व की उत्कृष्ट कब होगी, अब दूसरे से नीचे के नरकों में कब होगी, अपने अपने आयु के अंत में। बाकी गुणित कर्मवशी घटित अभी सातवें में अंत में रखना है ना, और बाकी में पहले समय शुरू में समय को प्राप्त कराना है। गुणित कर्मांशिक रूप से आया है और शुरू में उपशम समय को प्राप्त किया, सातवें नरक में गुणित कर्मांशिक लास्ट में लेना। देखो सातवें में जो गुणित कर्मांशिक हुआ है वहां से तीरंश में गया, और वहां से वो छठी नरक तक कहीं भी आया, तो उसके स्टार्टिंग में मिथ्यात्व का सत्व ज्यादा था, बराबर। फिर उसने औक्षमिक समय को प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व में से इनका द्रव्य बन गया सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व। तो नारकी के लिए उत्कृष्ट उसको कहेंगे, वहां के नारकी के लिए। सातवें नरक के नारकी के लिए आयु के अंत में घटित करना है। गुणित कर्मांशिक हो जा रहा है उसके एक ही अंतर्मुख पहले उसने सम्यक को प्राप्त किया, वहां उसको लेना, और ऊपर के नरकों में वो शुरू में लेना, स्टार्टिंग में लेना। यहाँ क्या लिखा देखो, इतनी विशेषता इनमें सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों के नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात भागहीन होती है। वहाँ उनकी तो अनुत्कृष्ट ही पाई जाएगी, उनके अपने अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा। देखो सम्यक्त्व का उत्कृष्ट है तब, हाँ तभी सम्यक्त्व का भी उत्कृष्ट होगा। दोनों का सेम है ना, अंत समय में दोनों का अपना अपना उत्कृष्ट होगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना ही नहीं, अपने अपने उत्कृष्ट अपना अपना कितना है वो देखना है। पहले नरक में कृतकृत्य वेदक आता है उसकी बात छोड़ दो, दूसरे नरक की बात करेंगे। दूसरे नरक के लिए मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब है, पहले समय में, और दूसरे नरक के लिए सम्यक मिथ्यात्व कहो या सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट कब है, वहाँ अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तब होगा, उसके अंतिम समय में सम्यक्त्व के औक्षमिक सम्यक्त्व के अंतिम समय में। बाय दैट टाइम मिथ्यात्व कम होगा कि नहीं हुआ, औक्षम सम्यक्त्व के काल में उसका स्थिति कांडक वगैरह हो गए वहाँ, तो घट गया है तो अनुत्कृष्ट हो गया, कितना गल गया है, असंख्यात्व भाग कम हो गया। उस नरक की अपेक्षा सोचना है। जब हम एक एक नरक की अलग बात कर रहे हैं, उस नरक में जितना उत्कृष्ट है उसके साथ सोचो। जब सभी नरकों में बात करनी है एट टाइम, तो सातवें नरक के अंतिम में सोचो। देखो इसके इसके यानी सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट वाले के सम्यक मिथ्यात्व की नियम से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। हमने देखा ना दोनों का एक समय में होता है, दूसरी से लेकर नीचे के नरकों में, हाँ जो वहां उत्पन्न होने के एक अंतर्मूर्त में औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, औक्षम सम्यक्त्व के अंतिम समय में उसका सम्यक्त्व का भी उत्कृष्ट है, और उसी समय में उसका सम्यक मिथ्यात्व का भी उत्कृष्ट है उसके लिए। क्योंकि सम्यक सॉरी उच्चतम सम्यक्त्व का अंतिम समय सम्यक मिथ्यात्व की अपनी अपनी उत्कृष्ट है, सम्यक प्रकृति की अपनी अपनी उत्कृष्ट है, उन दोनों में कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हमेशा सम्यक प्रकृति से सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुणा ही होगा। हम किसके साथ कंपेयर करें, उसके अपने उत्कृष्ट के साथ कंपेयर करना है, और तब सम्यक मिथ्यात्व की पोजीशन क्या है वो भी अपना उत्कृष्ट है। ख्याल में आई ये बात? लक्ष्मी बेन नहीं, अपना अपना देव, हम दूसरे नरक के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट कब होगा? तो पहले गुणित कर्मोशिक से आया है, अभी तीरंज में एका दूसरे भोग करके फिर नरक में आ गया है,
पहले पहले समय में।
हाँ, तो पहले समय में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है, अंतर्मूर्त में सम्यक को प्राप्त किया, तो उष्ण सम्यक के अंतिम समय में सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट हुआ, उसी समय में सम्यक मिथ्यात्व का अपना उत्कृष्ट हुआ है। तभी सन्निकर्ष में ये बात बता रहे है, जिस समय सम्यक का उत्कृष्ट है प्रदेश विभक्ति, उस समय सम्यक मिथ्यात्व की पोजीशन क्या है वो भी उत्कृष्ट ही है, उसमें विकल्प नहीं, उत्कृष्ट भी होगा अनुत्कृष्ट भी होगा ऐसा नहीं है, उस जीव के लिए बात चल रही है। पहले नरक में सोचो तो अलग है, क्योंकि पहले नरक में सम्यक की उत्कृष्ट कृतकृत्य वेदक के पहले समय में है, उस समय सम्यक मिथ्यात्व तो होगा क्या? नहीं होगा, अरे उसकी सत्ता ही नहीं होगी, है कदम करके कृतकृत्य हुआ है, ख्याल में है ना बात? और सातवें नरक में घटित करना है तो
अंतिम,
तो अंतिम समय में लेना है, दोनों एट ए टाइम होता है, तो अपने अपने नरक में हमने अलग अलग विचार करना है, जहाँ कृतकृत्य है वहाँ डिफरेंस है, अन्यत्र जहाँ सम्यक्त्व का उत्कृष्ट है वहीं पर सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है। ये बात क्लियर होगी?
विशेषण पढ़ लो।
हाँ विशेषण पढ़े अंत में, क्योंकि गुणित कर्मांश होने जा रहा था उसके पहले ही अंतर्मुख पहले उसने सम्यक तो प्राप्त किया उपसम। विशेषार्थ सामान्य से नारकियों में और पहली पृथ्वी में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जी उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमें सम्यक की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का सत्व नहीं होने से, उनका तो सत्व ही नहीं है पहले नरक में कृतकृत्य वेदक के, उनका सन्निकर्ष नहीं कहा, परंतु द्वितीय आदि पृथ्वियों में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए वहां सम्यक की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समय सबका सत्व स्वीकार किया है। सामान्य में है तो उनकी मिथ्यात्व की बात ही नहीं की थी उन्होंने, ये तो आदेश से हमने देखा। अब तीरंज की बात कल देखें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।